मेरे प्रिय युवा साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का नमस्कार। फ्रेंड्स, आज 29 अगस्त 2017 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन 12 नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी की अभी अक्टूबर नवंबर में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन साथियों के नाम हैं अरुणेंद्र पटेल भोपाल मध्य प्रदेश से, धनंजय कुमार राय गाजीपुर उत्तर प्रदेश से, जय कृष्ण गुप्ता गया बिहार से, रौनक कुमार सीतामढ़ी बिहार से, मंगेश बाबा साहेब देशमुख सतारा महाराष्ट्र से, त्रिनेत्र अवस्थी रीवा मध्य प्रदेश से, विश्वजीत कुमार छपरा झारखंड से, धीरेन्द्र कुमार महितपुर बिहार से, योगेश कुमार पुरबिया फैलासिया राजस्थान से, ईशान जैन भोपाल मध्य प्रदेश से, मणि शर्मा भोपाल मध्य प्रदेश से और चंद्रहास सिंह ठाकुर मोहल्ला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से। तो अरुणेंद्र, धनंजय, जयकृष्ण, रौनक, मंगेश, त्रिनेत्र, विश्वजीत, धीरेन्द्र, योगेश, ईशान, मणि और चंद्रहास, आप सभी 12 साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, क्लास के बारे में ही मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अब मैडम के पास काफी स्टूडेंट्स के जो अभी क्लासेस में आने वाले हैं उनके फोन आ रहे हैं, कुछ मेरे पास मेल भी आए हैं जिनकी संख्या काफी हो गई है और वो खासकर इस बात को जानना चाह रहे हैं कि क्लासेस में आने से पहले उन्हें क्या क्या पढ़कर आना चाहिए। और मित्रों, मैं आप लोगों की इस जिज्ञासा और इस उत्सुकता का तहे दिल से स्वागत करता हूं और सच पूछे तो मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगता है कि आप लोगों में इतनी उत्सुकता है कि हम अपनी पहले से कुछ तैयारी करके आएं। और डेफिनेटली जब हम पहले से कुछ तैयारी करके आते हैं तो जो हम वहां पाना चाहते हैं वो और उसे हम बेहतर तरीके से पा सकते हैं। लेकिन यहां मैं आप सबको एक अलग बात कहने जा रहा हूं, हो सकता है कि आप मेरी इस बात से सहमत ना हो, और वो ये कि आपको कुछ भी पढ़कर फिलहाल हमारी अपनी तरफ से नहीं आना है। यानी कि आप जिस तरीके से अभी तक अपनी तैयारी करते रहे हैं, आप उस तरीके से अपनी तैयारी करते रहे, उसमें हम लोग किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहेंगे। अगर मेरा थोड़ा बहुत हस्तक्षेप है आपकी तैयारी में, अगर आप इसे हस्तक्षेप कहें तो, या यूं कह लीजिए कि सहायता है, तो यह मेरा डेली ऑडियो लेक्चर है, लाइफ मैनेजमेंट भी है, इसे आप सुने और इसके आधार पर अपने को ढालने की कोशिश करें, बस इतना ही। मित्रों, बेसिकली ये जो 15 दिन की क्लास है ये बताया ही इसके तहत ये बात ही बताई जाएगी कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सिविल सर्विस की टेक्निक क्या है, आंसर, मतलब इतनी सारी चीजें होंगी कि जहां तक मैं समझता हूं कि अगर आपने वास्तव में इन 15 दिन की क्लासेस को ईमानदारी के साथ अटेंड किया तो आप देखेंगे कि एक जो इनसाइट होती है, जो एक अंतर्दृष्टि होती है, वह आपके अंदर आ जाएगी कि तैयारी करनी कैसी है, पढ़ाई कैसे करनी। हालांकि ये बात बड़ी छोटी सी लगती है कि हमें नहीं मालूम है कि तैयारी कैसे करनी है, पढ़ाई कैसे करनी है। मित्रों, हम सब्जेक्ट लेकर के बातें करेंगे, मतलब बकायदे सब्जेक्ट्स होंगे, वो सिविल सर्विस के पाठ्यक्रम के तहत सब्जेक्ट्स होंगे, हमारे पास अनसॉल्व पेपर्स होंगे, प्री के होंगे, मेन्स के होंगे, कि देखिए किस किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और उन सबको आधार बना करके ही आपके साथ 90 घंटे बिताए जाएंगे, एटलीस्ट 90 आवर्स। तो वो जो चीजें होंगी वो आपके एक अलग किस्म की मानस की रचना करेंगी, मतलब एक अलग तरह की, जिसे मैंने अंतर्दृष्टि कहा, वो आपकी पैदा करेंगी। तो इसलिए फ्रेंड्स, अभी आप जो कुछ भी कर रहे हैं, जैसे भी आपकी तैयारी चल रही है, आप करते रहें, अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया है, 22 अक्टूबर को पहुंचने में अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया है, बहुत जल्दी ही हम सब की मुलाकात होने वाली है और फिर बातों का सिलसिला शुरू होगा जो लगातार 15 दिनों तक जारी रहेगा। राइट फ्रेंड्स, अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर। दोस्तों, आज मुख्य विषय के रूप में हम डोकलाम विवाद पर बात करेंगे और सच पूछे तो डोकलाम विवाद के माध्यम से हम थोड़ा सा चाइना और भारत के संबंधों के बारे में बात करेंगे और इसके माध्यम से मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर जब आपको तैयारी करनी होती है करेंट इश्यूज पर, तो वो तैयारी कैसे की जानी चाहिए। तो आप यूं कह सकते हैं डोकलाम विवाद आज का हमारा यह विषय होगा, राइट। केंद्र में डोकलाम विवाद होगा और इसके जरिए हम दूसरी बातें करेंगे। दोस्तों आइए अब हम न्यूज पर आते हैं। देखिए पहली खबर तो चीन और मतलब ये डोकलाम विवाद को ही लेकर के थी कि यह विवाद अब सुलझ गया है, तो इसे हमने मुख्य विषय के तहत चुकी रखा है, तो इस पर हम बाद में बातें करेंगे। दो खबरें छोटी छोटी और हैं मित्रों। एक खबर जो बहुत प्रोमिनेंट है पूरे देश में, अभी वो हेडलाइन के रूप में चल रही है, वो डेरा सच्चा सौदा के जो गुरमीत राम रहीम है उनको जो सजा सुनाई गई है, दो मामलों में 10 और 10 साल यानी कि टोटल 20 साल की सजा उनको सुनाई गई है। मैंने दोस्तों इसके अलग अलग एंगल को लेकर के आपसे थोड़ी बहुत बातें की भी हैं और सिविल सर्विस एग्जाम की दृष्टि से क्या तथ्य निकल कर आते हैं इसके बारे में मैंने आप सबको बताया भी है, है ना। मैंने जानकारी देने की यथासंभव कोशिश की है। मुझे लगता है कि खासकर धर्म क्या है, किस तरह से धर्म का आधार लेकर लोगों का भावनात्मक शोषण किया जाता है, किस तरह से धर्म जब संस्थाओं का रूप ले लेता है, चाहे वो आश्रम हो, मठ हो, ट्रस्ट कुछ भी है, धर्म को जब आप संस्था में तब्दील कर देते हैं कि संस्था बनने के बाद उसमें ताकत आनी चाहिए, आ ही जाती है। संस्था का मतलब तो समूह है और उसकी ताकत बढ़ जाती है, लेकिन कैसे जब वो संस्था में कन्वर्ट हो जाती है तो कैसे फिर जो सेल्फ इंटरेस्ट है, व्यक्तिगत हित है, लोगों के पनपने लगते हैं, और कैसे एक संस्था जो पहले एक प्रगतिशील विचारों को लेकर के चलती है, समाज सुधार और सेवा का व्रत लेकर के चलती है, बाद में किस तरीके से उसका स्वरूप बदल जाता है, वो लोगों के भावना शोषण का साधन बन जाता है। तो ये सब कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो इससे इमर्ज होते हैं, राइट। तो ये कह लीजिए कि ये एक प्रकार से सोशियोलॉजी का पार्ट है पूरी तरह से, इसे आप राजनीति से उस तरह से जोड़कर देखने की कोशिश मतलब पढ़ने की कोशिश न करें। देखिए राजनीति अपनी जगह है कि क्या राजनीतिक संरक्षण है और ये जो संस्थाएं होती हैं कैसे राजनीति पर अपने वोट के बैंक के माध्यम से एक अपना अधिकार बना लेती हैं, राजसत्ता के साथ धर्म का क्या संबंध होता है, ये एक मुद्दा है और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। लेकिन अभी जो मुझे सिविल सर्विस की दृष्टि से दिखाई दे रहा है वह है धर्म, संस्थाएं, आस्था और इनका शोषण, इनका गलत इस्तेमाल, और फिर हमारे संविधान में इनके लिए किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। इन सब बातों पर मुझे लगता है कि आपकी अच्छी तैयारी हो जानी चाहिए। मित्रों एक जो दूसरी अगली और आखिरी खबर है वो है हार्वी तूफान को लेकर के। देखिए एक साइक्लोन आया हुआ है, अमेरिका का जो ह्यूस्टन और टेक्सास का जो हिस्सा है उसमें बहुत भयानक तूफान आया हुआ है। अब आपको चाहिए कि थोड़ा सा एक समय है कि आप तूफान के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लें कि ये जो साइक्लोन है ये साइक्लोन क्यों आते हैं। देखिए जो आपके ज्योग्राफी का जो संबंध करंट अफेयर्स से है वो इसी तरीके से है, इसी रूप में करंट अफेयर्स ज्योग्राफी से जुड़ता है। अब हार्वी तूफान आ गया, इतनी उसने तबाही मचाई है, तो ये हार्वी तूफान क्या है, फिर आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये ट्रॉपिकल साइक्लोन है। ट्रॉपिकल यानी कि ये उष्णकटिबंधीय तूफान है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये उष्णकटिबंधीय तूफान क्या होता है, उष्णकटिबंध में क्यों तूफान आते हैं, उसके क्या उसके पीछे क्या मैकेनिज्म है, ये बातें आपको मालूम होनी चाहिए, राइट। तो मैं इस पर बात अभी नहीं करने जा रहा हूं क्योंकि हमारे पास इतना वक्त नहीं है, लेकिन मैंने आपको एक टॉपिक बता दिया है जिस तरीके से सिविल सर्विस की तैयारी की जानी चाहिए। फ्रेंड्स अब मैं आता हूं डोकलाम विवाद पर, और सच ये है कि हम लोग डोकलाम विवाद के जरिए इनफैक्ट जो भारत और चीन के जो संबंध है उसके बारे में बात करेंगे और थोड़ा सा ये भी देखेंगे कि हमें कैसे सिविल सर्विस की तैयारी करनी चाहिए इंटरनेशनल अफेयर्स को लेकर। मित्रों ये बात मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूं और आप लोगों के जेहन में ये बात बैठ भी गई होगी कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ हमारे क्या संबंध है, अच्छे, खराब, तनावपूर्ण, इनको लेकर के सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। आप अनसॉल्व पेपर उठा करके देख लीजिए और आपके सिलेबस में सीधे सीधे मेंशन भी किया हुआ है। नो डाउट हमारा जो अभी तक का इतिहास रहा है आजादी के बाद का, तो हम देखते हैं कि जो 3-4 राष्ट्र हैं वो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें 2 तो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है पाकिस्तान और चाइना। ये हमारी सीमा पर हैं और लगातार भारत के साथ इनके जो संबंध हैं वो विवादास्पद होते जाते हैं, ठीक होंगे फिर विवादास्पद हो जाते हैं और युद्ध भी हो चुका है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये तीनों के तीनों जो राष्ट्र हैं इनके पास न्यूक्लियर पावर है, भारत के पास भी न्यूक्लियर शक्ति है, लेकिन वो बहुत स्पष्ट उसकी धारणा है कि वह अपनी परमाणु क्षमता का प्रयोग, परमाणु शक्ति का प्रयोग केवल शांतिपूर्ण कामों के लिए करेगा, विकास कामों के लिए करेगा। मित्रों, अब आप देखिए कि जो डोकलाम है इसकी तैयारी आप कैसे करेंगे, राइट? होता क्या है कि हम छोटी छोटी चीजों को छोड़ देते हैं और हम बड़ी बड़ी चीजों के चक्कर में पड़ जाते हैं, जैसे कि डोकलाम विवाद के कारण क्या थे और इसके क्या परिणाम हुए, हम इन चीजों पर चले जाते हैं। ये चीजें होनी ही चाहिए, लेकिन जब हम डोकलाम शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो आपको मालूम ये होना चाहिए कि भाई ये डोकलाम है क्या, ये क्या है। फिर आपको ये मालूम होना चाहिए किसी भी इशू की मैं बात कर रहा हूं कि वो पर्टिकुलर है क्या, और ये है क्या इसे आप आइडेंटिफाई कीजिए बाकायदे मैप पर जाकर। ये नहीं कि आपने अखबार में पढ़ लिया कि साहब डोकलाम जो है ना एक स्थान का नाम है जो बेसिकली भूटान में है, चीन इस पर अपना दावा करता है, यानी कि डोकलाम एक स्थान है, भारत में तो है नहीं। फिर अब ये होता है कि जब भारत में नहीं है तो ये भूटान और चीन का मामला है, तो फिर ये भारत इसमें क्यों आ गया। तो जब आप इस इश्यू पर सोचते हैं तो फिर आपको पता लगता है कि चूंकि भारत और भूटान के बीच में एक संधि है सुरक्षा संबंधित, तो इसलिए भारत भूटान के साथ है, तो डोकलाम भूटान में है। फिर चीन इसमें क्यों आ गया, तो चीन इसलिए आ गया क्योंकि चीन वहां एक सड़क बनाना चाह रहा है, डोकलाम में सड़क बनाना चाह रहा है, चीन उस क्षेत्र पर अपना दावा करता है। ये लेकिन आप इन तथ्यों को तब अच्छे तरीके से समझ पाएंगे जब आप नक्शे में जाकर देखें। हो सकता है फ्रेंड्स कि नक्शे में आपको डोकलाम स्थान अलग से छोटा सा दिखाई न दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको परीक्षा में कहीं मैप में डोकलाम के एग्जैक्ट प्लेस पर आइडेंटिफाई नहीं करना होगा, एक अवधारणा बनती है दिमाग में, क्योंकि अगर विवाद है तो याद रखिए कि ये जो विवाद है अंतर्राष्ट्रीय विवाद है, तो और अंतर्राष्ट्रीय जो विवाद होते तो दो देशों के बीच में है, लेकिन उसमें बहुत से देश शामिल हो जाते हैं, होना पड़ता है, क्योंकि अब पूरी की पूरी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की व्यवस्था इस तरीके की हो गई है। तो फिर जब आप देखेंगे नक्शे पर आप जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि जब आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट की तरफ, तो आपको छोटा सा राष्ट्र दिखाई देगा, भूटान दिखाई देगा, और भूटान से ही सटा हुआ चाइना है, भारत से भी सटा हुआ चाइना है। वो छोटे से हिस्से में अगर भूटान वाले हिस्से को छोड़ देंगे तो बाकी पूरे हिस्से में चाइना फैला हुआ है। तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि अच्छा, इसका मतलब यह हुआ कि इसमें नॉर्थ ईस्ट के स्टेट भी हैं, जो तिब्बत उब्बत भी, आपके सॉरी चाइना और भूटान के साथ साथ इसमें सिक्किम जैसे देश भी शामिल हो जाएंगे, मतलब ये हमारे सीमा प्रांत पर है। तो आपके दिमाग में एक फैक्टर होगा कि हाँ, अगर डोकलाम में चीन पहुंच जाता है और सड़क बना लेता है तो ये भारत की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, राइट? तो ये आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि यह विवाद क्या है, राइट? मित्रों, एक अच्छी खबर यह है कि अब डोकलाम विवाद लगभग हल हो गया है। विवाद क्या हो गया था कि चाइना वहां अपनी सड़क बना रहा था, भूटान इसका विरोध कर रहा था, लेकिन वो छोटा राष्ट्र, भारत के साथ उसकी संधि है, तो भारत ने अपनी सेना भेज करके इसका प्रतिरोध किया कि आप यहां सड़क नहीं बना सकते, और दोनों की सेनाएं आमने सामने खड़ी हो गई। दोनों कह रहे थे कि आप अपनी सेना पीछे हटाइए, लेकिन सेना पीछे नहीं हट रही थी किसी की, तनाव लगातार बढ़ते जा रहा था, और जो चाइना का जो एक सरकारी अखबार है वो लगातार इस विवाद को, यूं कह लीजिए कि उकसाने वाले वक्तव्य दे दे करके बढ़ाता जा रहा था। अंत में फिर अब भारत का ये स्टैंड रहा कि नहीं, इसे कूटनीतिक तरीके से, एक राजनयिक तरीके से, बातचीत डिप्लोमेटिक तरीके से सुलझाया जाना चाहिए, और उसमें सफलता मिल गई है। दोस्तों, अब जब हम ये देखते हैं कि इसमें सफलता मिल गई है, राइट, तो भारत को ये सफलता मिली क्यों, ये आपको बहुत अच्छी से जानकारी होनी चाहिए कि भारत की सफलता का मुख्य कारण क्या रहा। इस पर अभी आर्टिकल्स आएंगे, इस पर एडिटोरियल कमेंट भी आएंगे, तब मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, लेकिन अभी तक जो थोड़े बहुत तथ्य हमको मिल पा रहे हैं, देखिए कि चीन का अब हुआ क्या है कि चीन अब पूरी दुनिया में एक विस्तारवादी देश के रूप में माना जाने लगा है, कि ये अपने को एक्सपेंड करना चाहता है, अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता है, मतलब ढेर सारे ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों पर अपना अधिकार करे, छोटे राष्ट्रों को अपने कब्जे में ले ले। तो यह चीन की एक विस्तारवादी नीति दुनिया को दिखाई दे रही है, और आर्थिक रूप से चीन आप देख ही रहे कि किस तरीके से उसका इंपीरियलिज्म फैलता जा रहा है। तो अब चीन की जो विस्तारवादी नीति है, इससे न केवल दुनिया के जो दूसरे बड़े राष्ट्र हैं वही चिंतित हैं, बल्कि इसकी विस्तारवादी नीति के कारण जो छोटे छोटे देश हैं वो भी परेशान हैं। क्योंकि अब आपको एक तथ्य मैं दे रहा हूं, फिर से आपको मैप पर जाना होगा, वो है दक्षिण चीन सागर। अब आप फिर से मैप खोलिए और मैप खोलने के बाद देखिए कि ये साउथ चाइना सी है कहां। देखिए वैसे अगर बड़े अंश में लेंगे तो वो आपको नॉर्थ पैसिफिक ओशन का हिस्सा है, तो साउथ चाइना सी चाइना के साउथ में है, इसीलिए उसका नाम साउथ चाइना सी है। फिर आप देखेंगे कि साउथ चाइना सी के आसपास दुनिया भर के दूसरे छोटे छोटे देश हैं, फिलीपींस है आपको, फिर मिल जाएगा ताइवान है, वियतनाम है, कंबोडिया है, थाईलैंड है, इस तरह के छोटे 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 आपको बहुत से देश मिलेंगे। ये आपके दिमाग में होने चाहिए। अगर आप सच में इंटरनेशनल की तैयारी बहुत अच्छे से करना चाहते हैं तो वो मैप आपके दिमाग में होना चाहिए। तो अगर वो साउथ चाइना सी पर अधिकार कर रहा है, इसका मतलब है कि इन सारे देशों पर भी कहीं ना कहीं वो अपनी नजर गड़ाए हुए, अधिकार करने की बात नहीं है लेकिन अपनी नीतियां मनाने की बात है, अपनी बातें मनाने की बात है। और आपको मालूम है कि इंटरनेशनल एक ट्रिब्यूनल ने इस विस्तार को अवैधानिक भी घोषित कर दिया था, लेकिन चीन ने किनारे कर दिया। तो चीन अभी किसी की बात मान नहीं रहा है। तो बटने चोले कि अमेरिका की चिंता का कारण है यह, कहीं ना कहीं रूस भी चिंतित है और जापान तो विशेष रूप से चिंतित ही है। तो ऐसी स्थिति में जो शक्ति संतुलन बनता है, वो शक्ति संतुलन क्या बनता है? भारत और चीन के बीच में विवाद है और चीन से जो संत्रस्त हैं, आप कह लीजिए जितने भी एप्रिहेंसिव राष्ट्र हैं जो आशंका की निगाह से देख रहे हैं, वो भारत के साथ आएंगे। साथ ही साथ अमेरिका और जापान जैसे देश ये भी भारत को सपोर्ट करेंगे। तो बट नेचुरल है कि इन्होंने भारत को सपोर्ट करना शुरू किया। अब चीन के लिए थोड़ी सी चिंता की बात तो हुई और साथ ही साथ एक बात और हुई कि पूरी दुनिया में चीन की थोड़ी सी इससे थू भी हुई कि चीन क्या कर रहा है, साउथ चाइना पर अधिकार कर रहा है, उसमें को किसी की बात नहीं मानता है और अब ये जबरदस्ती यहां घुसपैठ कर रहा है। तो जब भारत की शक्ति उन्हें इस रूप में दिखाई दी तो स्वाभाविक है कि वो फिर थोड़ा सा ठंडा पड़ेगा। और एक बात और है मित्रों, जिसे मैं कह के खत्म करूंगा, जब आप मैप देखेंगे तो मैप में फिर आपको एक बड़ा अच्छा तथ्य दिखाई देगा और वो तथ्य यह है कि भारत के आप हिंद महासागर के हिस्से को देखिए, हिंद महासागर पर भारत का काफी अच्छा प्रभुत्व है, काफी अच्छा, हमारी जो सुरक्षा व्यवस्था यहां बहुत अच्छी है। मान लीजिए कि चीन से बहुत ज्यादा तनाव बढ़ गया तो ठीक है, अब ये जो चाइना में, साउथ चाइना में जो स्टीमर होकर के जाते हैं इधर, अब अफ्रीका की तरफ आप जाइए, अफ्रीका और मध्य पूर्व एशिया की तरफ जो जहाज जाएंगे वो हिंद महासागर से होकर के जाएंगे और हिंद महासागर में भारत की स्थिति बहुत बेहतर है। कल्पना करके देखिए कि अगर हिंद महासागर को भारत ब्लॉक कर दे चाइना के लिए तो क्या स्थिति होगी। और चाइना में जो कच्चा तेल वगैरह एशिया से होकर के आता है, 75% उसका व्यापार हिंद महासागर के थ्रू होता है, तो चाइना की स्थिति तो खराब हो जाएगी। फिर चाइना का कितना सामान भारत आता है आप सोचिए, अगर भारत उसको बंद कर दे तो चाइना की स्थिति क्या होगी। तो मतलब ये ऐसे तथ्य हैं जिनका दबाव चाइना ने महसूस किया और फिर इस सच्चाई को स्वीकार करते हुए उसने यह निर्णय लिया कि नहीं, अब तनाव को बढ़ाया नहीं जाना चाहिए। जितनी धमकी देनी थी, जितनी आंखें दिखानी थी वो कर लिया, लेकिन भारत भी चूंकि उससे ज्यादा शक्तिशाली रूप में डटा रहा तो अब समझदारी इसी में है कि अब इसको थोड़ा सा खत्म करने की कोशिश की जाए। तो मित्रों ये मैंने आपको सामान्य रूप में बताया है जो तैयारी करने के तरीके में आपके रिफ्लेक्ट होना चाहिए, इस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए और इससे आपकी तैयारी बहुत बेहतर होगी। तो मित्रों अब डोकलाम विवाद पर इतना ही। जहां तक न्यूज़पेपर का सवाल है, मैं क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, वो आप लोग देख ही लेंगे। अब मैं अंतिम चरण के रूप में ईमेल लिखने वाले सभी दोस्तों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं और उन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं, ए के वर्मा, कमल चीक बरैक अलीपुर द्वार वेस्ट बंगाल से, अवधेश चौहान, दीपशिखा चौहान, हर्षिता गुप्ता उन्नाव उत्तर प्रदेश से, मनीष मुलानी, सोनल कहालकर नागपुर महाराष्ट्र से, सत्येंद्र कुमार भारती उत्तर प्रदेश से, पंकज नंद महासमुंद छत्तीसगढ़ से, राजकुमार अग्रवाल अहमदनगर महाराष्ट्र से, शशिकला चौहान मुंबई से, प्रीति पटना बिहार से, तनु कुमारी तोरपा झारखंड से, बी के बिंदु, प्रशांत और कंचन, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। और दोस्तों इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को मैं यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।